તારીખ 2/4/1991 શ્રી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રકાશ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા સ્પષ્ટીકરણ સળંગ પ્રવચન નંબર 18
ધ્યાન કા પર્યાય મે ભી પ્રત્યક્ષતા સાથે સાથ પ્રતિ ભાવ એ એક સાથે કિસ પ્રકાર સે ચલતા હૈ જો પ્રસાદ તેજ કર દેતા હૈ વેગ કો બઢા દેતા હૈ સ્વરૂપ આશ્રય તો હોતા હૈ લેકિન તીવ્રતા સે તારતમ્યતા બઢ જાતી હૈ આશ્રય કરને કે ભાવ કે ડિગ્રી બઢ જાતી હૈ પદ્ધતિ
અધિકાધિક વિશ્વાસ
જો જ્ઞાન હૈ ઉસમે તો પ્રત્યક્ષપણા હૈ વો વેદકતા મે જાતા હૈ ઉસકા વિષય કે સહેજ પ્રત્યક્ષ મેને પૂર્ણ પ્રત્યક્ષ બેહદ પ્રત્યક્ષ એ વાત ભી જ્ઞાન કે સ્વ કે સ્વ જ્ઞાન મે સ્વ પ્રત્યક્ષ વેદક જ્ઞાન મે સ્વ કે કેસા उसके साथ जो है जैसा है वैसी जो प्रतीति है तो दोनों साथ मिलने से दोनों का एक साथ साइमल्टेनियसली परिणाम होने से उसको साथ को तीव्र कर देता है उग्रता को बढ़ा देता है स्वरूप आश्रय उग्रता तो आश्रय तो है ही उसकी डिग्री जो है एकदम इसे मिट्टी का तेल कैसे शुद्ध होता है कि जितनी जितनी इसको गर्मी मिलती है उतना वो शुद्ध होता है क्योंकि 700 डिग्री सेंटीग्रेड में वो गर्म होता है 1200 डिग्री में पेट्रोल बनता है 1500 डिग्री में अल्कोहल बनता है तो पहले था उतना स्थूल था ज्यादा क्रूर था मतलब फिर वो पतला तो इतना होकर के थिनर होकर इतना होता है कि रास्ते से पेट्रोल पतला है पेट्रोल से अल्कोहल पतला है सिंथेटिक अल्कोहल तो जैसे रिफाइन होता है जितनी गर्मी तो गर्मी है जिस जितनी गर्मी की डिग्री बढ़ती है तो उतना वो शुद्ध होता है परिशुद्ध होता है ऐसे उसमें प्रतीति तो प्रतीति है ज्ञान तो ज्ञान है ज्ञान और प्रतीति प्रत्यक्षता वाला ज्ञान और प्रतीति साथ जो उसका आश्रय भाव है उसकी डिग्री बढ़ जाती है उतनी शुद्धि बढ़ जाती है बस कहने का ये प्रोसेस इस प्रकार का है आश्रय होना और तीव्रता से आश्रय उसमें क्या कारण है जो तीव्रता है उसको पुरुषार्थ किया जोर से आश्रय नहीं ये उसमें दो भाव एक साथ काम करते हैं श्रद्धा और क्या दोनों मिलने से तीव्रता बढ़ जाती है। उसको स्वरूप ग्रहण कहते हैं। प्रतीति समेत ज्ञान ग्रहण करता है अपने स्वरूप को, वो स्वरूप ग्रहण शक्ति जितनी अच्छी है उतना प्रसाद लग जाता है। इसीलिए परमार्थ इसलिए कहा कि प्रवचन में और मैंने लिखा है उतना सूक्ष्मता से तो नहीं लिखा है, कुछ उसमें वो सिद्धांत पकड़ा है शिवभूति मुनि का दृष्टांत। ऐसे शिवभूति मुनि को कोई ज्ञान नहीं है ऐसा दिखता है, कुछ समझता नहीं आदमी, कुछ समझता ही नहीं, लेकिन उसका भीतर का ज्ञान जो है वो स्वरूप को अपने स्वरूप को ग्रहण करता है और उतना स्पष्ट रूप से ग्रहण करता है कि जितना जितने विशद पास है चतुर्थ गुण स्थान वाला नहीं। स्वरूप ग्रहण होता है चतुर्थ गुण स्थान में भी और स्वरूप ग्रहण होता है गुणी दशा में भी। स्वरूप ग्रहण शक्ति तो दोनों को ज्ञान दोनों के ज्ञान में है, दोनों को प्रतीति भी है। प्रतीति में कोई डिग्री नहीं है, वो तो है जो स्वरूप ग्रहण शक्ति है ज्ञान की, वो प्रकृति समेत जितने स्वरूप ग्रहण करने की उनकी जो विशेषता है उतना पुरुषार्थ पूर्ण हो जाता है। तो वो कैसे होते हैं कि वो प्रत्यक्षता को लेते हैं, मेन पॉइंट है तो प्रत्यक्षता। ज्ञान शक्ति भी कहते हैं, चतुर्थ गुण स्थान वाला शुद्धोपयोग में है, शुद्धोपयोग में अपना स्वयं का स्वरूप का ग्रहण करता है और मुनिराज आहार लेते वक्त जो स्वरूप का ग्रहण करता है तो वो बढ़ता है स्वरूप, उसके ज्ञान शक्ति स्वरूप ग्रहण करने में अधिक है आहार करते वक्त, जितना शुद्ध उपयोग के काल में चतुर्थ गुण स्थान वाले को नहीं है ऐसा दृष्टांत आया है। स्वरूप को ग्रहण करना ऐसा कार्य ज्ञान में चतुर्थ स्थान से चालू हुआ, वही पंचम स्थान में स्वरूप ग्रहण होता है, वैसा ही आगे के ऊपर के गुण स्थान में होता है, शुक्र ध्यान के श्रेणी में होता है। तो ज्ञान के स्वरूप ग्रहण शक्ति बड़ी है चतुर्थ स्वरूप का ग्रहण तो होता है लेकिन स्वरूप ग्रहण करने की शक्ति बड़ी है। बस वो पुरुषार्थ इतना बढ़ता है, ज्ञान कारण पुरुषार्थ कार्य। और प्रारंभ ऐसे ही हुआ है कि जहां तक स्वरूप परोक्ष था ज्ञान में वहां तक पुरुषार्थ चलता ही नहीं था, स्वयं की ओर को, साथ राग को साथ देता है। जब प्रत्यक्ष संशय, प्रत्यक्ष स्वरूप, प्रत्यक्षता ज्ञान में आई, उम्र के आता है अंदर से, ज्ञान और पुरुषार्थ का निमित्त इस प्रकार का सब। अपने स्वरूप की प्राप्ति न हो तब तक निर्णय के लिए तो धारणा करना चाहिए। तो धारणा सहज होती है, मैं धारणा करूं वहां तो बोझा उठाना है, धारणा के ऊपर तो वजन ही नहीं होना चाहिए। धारणा होनी तो चाहिए ना, ऐसा वजन नहीं। साधु हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। स्पष्टीकरण है कि स्वरूप की प्राप्ति के लिए विधि विषय जानकारी की धारणा होती है, फिर भी ऐसी सही धारणा पर वजन जाने वाले के अभिप्राय पर्याय का आश्रय करने का अभिप्राय जो अनादि से है वह चालू रह जाता है और वह अंतर्भुक्ता होने में वहां बाधक कारण बन जाता है। विधि तो अंतर्मुख होने की, फिर भी उसका जो वजन है वो धारणा सही है और कार्य होने में बाधक इसका वजन गलत जगह जाता है। वो धारणा के साथ साथ वजन बदल वजन है वो फिर जाना चाहिए। अनादि से पर्याय का आश्रय ऐसा प्रकार का है, उसमें फर्क नहीं हुआ तो धारणा किसका। हो तो कोई आपत्ति करना नहीं। भाव पकड़ में आ गया तो लंबी छोड़ी धारणा तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। कहने का भाव क्या है, कहने का अभिप्राय क्या है, वो तो पकड़ में आ गया तो बात खत्म। विधि विषय जानकारी थी कि विधि आई है, विधि आम है,
काम थे से, काम
आ रीते काम थे, आ रीते काम थे, विधि कार्य पद्धति कार्य निरीत वो समझ में ले लिया, इस प्रकार से काम होता है, इस ढंग से काम होता है, जैसा है वैसा जाना। प्रश्न दूसरा है कि ऐसे जानने वाले का वजन कहाँ है, उस जानकारी इस पर है या आपने सोच अश्रुत उत्तर भाव पर है। वजन जानकारी पर रह गया तो पहले नहीं जाना था, अभी जाना तो काम नहीं होने वाला है। पहले जानकारी सही होगी, सही जानकारी भी इनके लिए तो व्यर्थ हो जाएगी, ऐसा कहने का होता है। पहले तो सही जानकारी दोनों को नहीं होती, कुछ को भी होती है क्योंकि विषय थोड़ा सूक्ष्म है, और किसी को होती है कुछ प्रयत्न से होती है तो माथा डालते अच्छी तरह तो जानकारी होती है। तो ये तो बात कोई नई पैदा होगी तो जो पहले नहीं थी जानकारी ऐसे तो वहां वजन रह जाता है, एक नई तकलीफ पैदा होगी। विचक्षण पाया होने से भले ही नहीं जानकारी हुई, वजन मेरा कहाँ है उतनी विचक्षणता आपको अपने समझ में होनी चाहिए। वजन तो नहीं जाता है इतना ख्याल रहना चाहिए, तो फिर वो रुकेगा नहीं, अटकेगा नहीं। बता इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है, हाईली टेक्निकल, इसलिए तो अनंतकाल से पत्ता नहीं लगा है, इसका ही कारण है। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। पहले तो क्षोभ वाले जानकारी के विषय में अप्रयोजन विषय में अपनी शक्ति का प्रयोग कर लेते हैं, प्रयोजन भूत विषय पर कम आता है। वो अध्यात्म के प्रयोजन भूत विषय पर जाते हैं उनको ये वजन रहने में गड़बड़ी हो जाती है, ये तकलीफ। जिसको अप्रयोजन भूत विषय की जानकारी बढ़ गई उसका वहां वजन रहा, उसको प्रयोजन भूत विषय की जानकारी बढ़ गई उसका वहां वजन रहा, तो वजन रहने का जो स्थान है दोनों का कॉमन हो गया, गुण तो एक से हो गया।
क्या
पहलू हो सकते हैं? पहले नहीं, पहले वो ऐसे ऐसे समझ नहीं थी, अब विशिष्ट प्रकार के जब समझन हुई तो वो विशिष्टता भी, तो विशिष्टता आने से तो वो वजन का होने का सहज प्रकार बनता है। नई प्राप्ति हुई तो वजन आने होने का सहज प्रकार बनता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही पहचान की, पहचान में क्या होता है हमारे पास सर्वोत्कृष्ट तत्व जो परमात्मा तत्व है उसकी पहचान हमेशा उसका वजन उतना रहता है कि जितना किसी का रहे ही नहीं, केवल ज्ञान तक के पर्याय अनंत में बात है, इसका कोई हिसाब नहीं इसके आगे। तो रेशियो प्रोपोर्शन ही नहीं लगता अनंत में भाग का मतलब क्या, कि मैथमेटिकली देयर इज नो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उतना मान है इसकी जब पहचान हुई तो कहीं गलत जगह वजन रहना है किसी भी तरह इसलिए ये जो भावभाषण वाला स्वरूप निश्चय वाला मुद्दा है उसका ज्ञान तो बहुत है। भाव भाषण और पहचान एक ही बात है, सब
उसके पहले ये अलर्ट रहना चाहिए कि गलत जगह में नहीं जोड़ा।
उसके पहले क्या है कि पहचान के दिशा में भाव भाषण के दिशा में प्रयास नहीं करके दूसरी दूसरी जानकारी बढ़ाते हैं तो उसकी विशेषता बिना रहेगी नहीं, विशेषता का वजन आए बिना रहेगा नहीं। जो भी विशेषता होगी अवस्था वो तो विशेषता भाषित होगी। पर्याप्त दृष्टि तो है ही, पहले मुझे ऐसा नहीं था अब ऐसा मुझे हुआ, तो वजन तो वैसे ही नेचुरली बन जाएगा। वजन आना बहुत स्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है। वजन तो कब नहीं आता है, सर्वोत्कृष्ट तत्व तो भाषित हो गया, फिर सबका मिलान यहाँ हो जाएगा। जो भी अवस्था में विशेषता होगी होती रहेगी, मोक्ष मार्ग में तो उत्तर होता पर यह विशिष्ट होती जाती रहेगी, फिर भी मिलान वहां होगा। तो मैं तो ये इसके आगे तो ये कुछ
पहले
परिचय, मेरा परिचय नहीं है तो मेरी पहचान कैसे होगी, आपका परिचय मुझे नहीं तो आपकी पहचान कैसे होगी। पहचान का मतलब परिचय बढ़ता है तो पहचान आती है, प्रोसेस कहीं भी हो चौथा या चेतन का कपड़े को पहचानता है कि आर्टिफिशियल सिल्क है ओरिजिनल सिल्क है, दिखता है तो वो अच्छा आर्टिफिशियल है उसका दिखाव अच्छा है, मेरा नकली है बैंकों के उसकी लाइट ज्यादा दिखती है, जिसकी नजर पड़े तो पता कि अंधा है, लाइट तो इसमें जो सच्चा है उसमें लाइट है तो अंधा है ऐसा कहेंगे, उतना फर्क है नजर। पहचान तो क्या है, परिचय बिना तो पहचान होती है, परिचय का साधन क्या है, बार बार अवलोकन कर परिचय का प्रयोग है। परिचय तो कैसे होता है, किस प्रयोग से होता है, बार बार अवलोकन कर स्वभाव क्या है विभाव क्या है, अवलोकन से जाति पर खाती है उसका नाम पहचान। विचक्षणता पहले से होनी चाहिए कि अपने को कितनी भी इंफॉर्मेशन मिले लेकिन पहचान के प्रकरण में उसका क्या महत्व है, क्या उपयोग है, क्या स्थान है, उसी दृष्टि से इंफॉर्मेशन कितनी भी मिलो मिलती रहेगी पढ़ने से श्रवण करने से, लेकिन मेरी पहचान और भाव भाषण के विषय में कौन सा उसमें उपयोग है, क्या काम की चीज है, मतलब से तो पकड़ होनी चाहिए, मेरा मतलब तो पहचान करने का है, मतलब की बात है क्या नहीं है, पर राय प्रयोजन होते हैं मेरा प्रयोजन पहचान का पहचान नहीं का है, तो उसमें जो भी बात मिले वो उस मतलब में कोई काम में आने वाली चीज है, इससे के लिए कोई काम में सबक नहीं रखते, उतना ही इससे देखना है। प्रयोजन की पक्का तो शिक्षण होनी चाहिए, अज्ञानी को होकर परिणाम का ही वेदन होता है, परिणाम के साथ ही समुचा है, परिणाम में पड़ा है उसका वेदन नहीं होता। खुद की भाषा में आखे पे आखा पड़ा है ऐसा लेते हैं, परिणाम के साथ ही पड़ा है तत्व, लेकिन अपरिणामी में दृष्टि जमा कर उसमें तादात्म्य होकर प्रसक पर अपनापन होते ही साइमल्टेनियस परिणाम कितने होते हैं, दृष्टि जमा कर सत्ता की अपेक्षा तादात्म्य होकर एकाग्रता लिया, प्रसक कर आश्रय लिया और अपनापन होते ही उसी क्षण में अपरिणामी और परिणाम दोनों का एक साथ अकेले परिणाम का वेदन मिथ्या दृष्टि को ही होता है, तो एक साथ दोनों का अनुभव रहता है सामान्य और विशेष दोनों का, मतलब तो सामान्य का तो वेदन हो गया और विशेष का वेदन हो गया, और विशेष का वेदन उस प्रकार के जो सामान्य अहम पड़ा स्वभाव जिसमें ऐसा विशेष किसी प्रकार का अनुभव होता है, पर्याय स्वरूपाकार हो जाती है, ऐसी पर्याय के अनुभव को अर्थात द्रव्य स्वरूप के अभेद भाव अनुभव को भाव में अभेदता है, फिजिकली अभेदता नहीं है, पर्याय पर्याय है, द्रव्य द्रव्य सामान्य सामान्य विशेष सामान्य रूप नहीं हुआ, लेकिन भावाकार में तो हुआ है, द्रव्याकार से नहीं हुआ है, अभेद उसको अभेद भाव अनुभव को द्रव्य का अनुभव कहने में होता है, वास्तव में अनुभव की सीमा पर्याय को उल्लंघन नहीं करती, बिल्कुल स्पष्ट है कि पर्याय वास्तव में अनुभव की सीमा पर्याय को उल्लंघन नहीं करती, लेकिन कहने में ऐसा आता है कि द्रव्य पर्याय दोनों का अनुभव है, क्योंकि द्रव्य में अहम पना पर्याय ने किया है और द्रव्य पर्याय का भेदभाव जहां अनुभव में नहीं रहा, दोनों का भेद अनुभव में नहीं रहा, ज्ञान रह गया लेकिन भेद भेद का ज्ञान रह गया फिर भी भेद नहीं रहा, भेद का ज्ञान होते हुए भी अनुभव में भेद नहीं, अनुभव भी ज्ञान है और भेद का ज्ञान भी ज्ञान है, दोनों ज्ञान
एक ही साथ
कितने पहलू हैं एक परिणाम के कितने पहलू हैं, अंतर बाह्य परिभाषा है इसलिए ज्ञान प्रमाण नहीं होता, परिणाम रूप होता
है, परिणाम ज्ञानी को निरंतर
है,
ऐसा परिणाम ज्ञानी को निरंतर है,
प्रमाण निरंतर है,
ऐसा न हो रहा था, इसका अगर स्पष्टीकरण नहीं, इसका भाव समझ नहीं आता।
पहले स्पष्ट किया नहीं तो अकेले परिणाम का ही वेदन आता है। पढ़ाने टीका भी साथ में हमने कर दिया, पढ़ा होने से वेदन पर्याय में होने से अकेला वेदन इस प्रकार का वेदन,
जबकि पर्याय का ही वेदन है, पर्याय में ही वेदन है,
पर्याय की सीमा के बाहर वेदन नहीं है, फिर भी उसके लिए चार शब्द पुरा प्रयोग किया है। अपरिणामी में दृष्टि जमी जमी, उसमें तादाद हुआ, उसमें इतना आश्रय हुआ कि जैसे व्याप्त व्यक्त हुआ प्रसर गया और उसमें अपना कम होने से भेद नहीं गया, ऐसा भेद नहीं लिखा भी है, त्रिका लिखा भेद नहीं था, ऐसा अपना चार शब्द का नाम एक साथ, एक साथ दोनों का कहने में भेद पड़ता है, भाष्य में भेद का अनुभव ऐसा कथन में भेद आया, उसका वाच्य है भेद, शब्द के अंदर तो अर्थ नहीं है, अर्थ दूसरा है, शब्द दूसरा है, क्योंकि मुख्य भाषा मुख्य है और मुख्य को मुख्य कर सर्वोत्कृष्ट मुख्य के रूप में जाना है, प्रतीत किया है और अनुभव किया है कि ऐसा ही मुख्य है, इसकी मुख्यता इतनी हो गई कि आश्चर्य हो गया है इसका, ऐसा अनुभव किया है, इसलिए इसकी मुख्यता छुपने का सवाल है। चर्चा नहीं होती तो कितनी बात बात में आ जाएगा, नहीं होती तो बात में बहुत धीरे धीरे क्षेत्र ज्यादा है।